خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یہ دوسرا موقع آ گیا کہ حق کی بات ہوئی صورت میں، اور اب بار بار پڑھیں گے حق سچ۔ لوگ اب اپنی بنیادیں حق کے ساتھ بناؤ۔ قرآن سینے میں آتا ہے تو اس کے بعد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب بے مقصد زندگیاں چھوڑو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اب تم بے مقصدیت سے نکل کر مقصد کی طرف آ گئے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد تم دوبارہ انہیں بے مقصد چیزوں میں کھو جاؤ گے تو تم نے تخلیق کائنات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ تو اللہ نے بالحق پیدا کیا۔ یہ وہی بات ہے جو بھی پیچھے سورۃ سواد میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو باطل نہیں پیدا کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ دنیا کھاؤ پیو عیش کرو موج مستی، ایٹ ڈرنک بی میری۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایک مقصد سے پیدا کیا، اور مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں انسان اللہ کو راضی کرے اور اس کے بعد کل اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بنائی ہوئی جنتوں میں چلا جائے۔ اور حق کے ساتھ کا ایک اور مراد بھی ہے کہ یہ کائنات کمپلیٹ ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیے، میں اکثر غور کرتی ہوں تو میں کانپ کے رہ جاتی ہوں، کتنے ٹریلینز اینڈ ٹریلین سٹارز ہیں آسمانوں میں، کتنے سیارے۔ ایک ایک سیارے کا پھر چاند الگ ہے۔ ہمارا چاند ایک ہے نا، تو باقی سیاروں کے ایک ایک سیارے کے کئی کئی چاند ہیں۔ کوئی ڈس آرگنائزیشن دکھتی؟ کوئی الجھی ہوئی؟ اتنے ستارے آپ سوچیں ذرا جو آسمان پہ ہیں، امیجن کریں ذرا آپ، اس کا 1/10 ہمارے پاس۔ کوئی امیجن کریں آپ چیز ذرا، ستاروں سے کیا تشبیہ بنتی ہے؟ یعنی کوئی آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں، آپ کو ملتی وقت پہ؟ وہ آپس میں الجھ الجھ کے ٹوٹ چکی ہوتی، گم ہو چکی ہوتی، ہم کہتے مل نہیں رہی، پتہ نہیں کدھر ہے۔ کبھی آپ نے کسی سائنسدان سے سنا ستارہ گیا کدھر؟ مل نہیں رہا، پتہ چلا وہ ادھر ادھر ہو گیا، وہ ڈس آرگنائز ہو گیا۔ بالحق، جہاں جس کو ہونا چاہیے وہاں، یہ زندگی کا حسن ہے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا۔ نہیں ہوں گے نا تو آپ اپنی کامیابیوں کو پیچھے کریں گے۔ دیکھیے کہ ہم اپنی ترقی کے راستے میں خود ہی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری میں نے کہاوت پڑھی کہ ایک بہت بڑی فرم تھی جس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے تھے۔ ایک دن صبح جب ورکرز وہاں آئے تو انہوں نے فرم کے دروازے پر ایک نوٹس لکھا ہوا پایا، اور لکھا ہوا کیا تھا اس میں کہ آج اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے جو ہمارے اس ادارے کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ سب نے پڑھا انا للہ، پتہ نہیں مر گیا کوئی۔ پھر دوسرا سوال ورکرز کے ذہن میں آیا کہ ہائے بیچارہ مرا، پر یہ ہے کون تھا بھائی جو ہمارے اس ادارے کی ترقی میں رکاوٹ تھا؟ انہوں نے نیچے سے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اسی بلڈنگ کے نیچے جو بیسمنٹ ہے نا، آج وہاں اس کا فیونرل ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہاں جا کے شامل ہوں اور اس کو دیکھیں کہ جو ہماری آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ کہتے ہیں کہ جو ورکرز آئے انہوں نے سوچا کہ چلو جو بھی تھا ہم جا کے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب باری باری اندر جاتے گئے، اور جب بیسمنٹ میں گئے تو وہاں دیکھا کہ واقعی وہ اس باپ تھے جو فیونرل سمجھتے ہیں نا، جنازہ جہاں ہوتا ہے اس کے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے دیکھا تو بیچ میں کفن رکھا ہوا ہے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تابوت جس کو ہوتے ہیں، تو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ باری باری اکیلے اکیلے جائیں اور اس کو دیکھ کے تو آگے بڑھتے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ جا کے جب دیکھتا ہے نا، تو جو شخص ہے نا وہ جو ہی اس کی شکل دیکھتا ہے نا، تو ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ شخص ہماری کامیابی کے بیچ میں رکاوٹ تھا۔ جو کفن تھا اس کے بیچ میں انہوں نے ایک مرر رکھا ہوا تھا، جو جاتا تھا نا اس کو اپنی تصویر دکھتی تھی، تو وہ پیچھے ہو جاتا تھا۔ پھر دوسرا، پھر انہوں نے اس کے بعد ایک کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں ایک ای میل میرے پاس آئی تھی، تو اس کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں، اس کو آج ماریں۔ انہوں نے کہا آج اس شخص کو مار دو، ہم ایک نیا انسان بنیں گے، ہم اپنی کمیوں کو دور کریں گے، ہم اپنی شارٹ کمنگس کو دور کریں گے، اور جب ہمارا وہ ایک ادھورا انسان مر جاتا ہے تو ایک بڑا خوبصورت انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتی۔ اس نے ہر بندے کو آگے بڑھنے کے ایک جتنے موقع دیے، اس نے ہر بندے کے لیے جنت کے راستے ایک ہی جتنے رکھے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ جو جنت میں بھاگ کے پہنچ رہے ہیں اشرہ مبشرہ بن کر، ان کے لیے کوئی اسپیشل ٹریک تھا، کوئی شارٹ کٹ تھا کہ ادھر سے بھاگ جاؤ، کوئی رش فری روڈ تھی۔ دنیا میں تو ایسی کئی بلائیں بنی ہوئی ہیں نا، یہاں تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن امریکہ میں جو ہائی ویز ہوتے ہیں نا، تو ان کے بٹوین، جیسے ایک روڈ ادھر سے جانے کی اور ایک ادھر سے جانے کی ہے نا، تو اس کے بیچ میں ایک پتلی سی روڈ بنی ہوتی ہے، آپ امیجن کریں کہ جہاں بس ایک گاڑی گزر سکتی ہے لیکن کراس نہیں کر سکتی، और उसको एचओवी लेन कहते हैं। एचओवी लेन का मतलब क्या है कि उसमें सुबह जो रश टाइम होते हैं ना, तो वो सिटी की तरफ उसको खोलते हैं, और जब शाम छुट्टी का वक्त होता है तो सिटी से आउटसाइड पे खोलते हैं। बस एक वक्त में एक गाड़ी जाती है उसमें, और ये वो होती है जिसमें स्पीड आप कम नहीं कर सकते, तेज़ भागना है। बाहर लोग ट्रैफिक में स्ट्रक हैं सुबह जैसे भी रोड्स में होते हैं, लेकिन एचओवी लेन वाले यूँ भाग रहे होते हैं जैसे कोई किसी मिनिस्टर की गाड़ी है ना। और उसकी शर्त क्या है कि एक बंदा नहीं जा सकता गाड़ी में, कम से कम दो होने चाहिए, क्योंकि वो रश को ब्रेकअप करने के लिए करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अपने साथ जो ड्राइविंग सीट के जो दूसरी सीट है ना, उस पर एक डमी पुतला बिठा लेते हैं, उसके ऊपर कोई कोट शोट पैंट पहना के दूर से पुलिस को लगे कि ये साथ कोई दूसरा बैठा है, लेकिन एचओवी लेन लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि आधे घंटे का सफ़र 5 मिनट में हो जाए। बहुत तेज़ चलता है वो, उसकी स्पीड की लिमिट ही शायद मेरे लिए 70-80 से ऊपर शुरू होती है। तो भाग रहे हैं ना। अब ये तो दुनिया में, जन्नत में तो अल्लाह ने कोई ऐसे रास्ते नहीं रखे। क्या अबू बकर को तो दिख गए, मुझे दिख ही नहीं रहे, पता नहीं अल्लाह ने छुपा लिया। सबके पास ऑप्शंस होते हैं, नेकियों की अपॉर्चुनिटीज़ हर बंदे के साथ होती हैं। और कुरान क्या करता है? आपकी वो आँख खोल देता है जिससे आप नेकियों के मौके को देखने लगते हैं। जिसको मिल गई, जैसे मिसाल है कि आजकल एक नेकी का मौका हमारे हाथ में है, तो मैं सोचती हूँ नहीं, मैंने नहीं किसी को बताना जब तक पहले मैं अपना ये मौका ना अवेल कर लूँ। मैं क्यों अपनी नेकी किसी और को दूँ? मैं दूसरों को तब बताऊँगी जब मैं नहीं कर सकूँगी। आपके पास कोई नेकी हो सकती है, आप कहते नहीं पहले मैं ही कर लूँ ये नेकी, फिर मैं दूसरे को दूँ। हम जब दूसरों का मुँह देख रहे होते हैं ना नेकियों के मामले में, तो सारे मुँह देखते रह जाते हैं। तो खलक समावाति वल अर्द बिल हक, अल्लाह ने हक के साथ पैदा किया। उसके यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है ना, ये सब के लिए एक है। मन जद्दा बजदा, जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो जल्दी चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो भागेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। युकव्विरुल्लैल अलन नहार, वो लपेटता है रात को दिन पर। व युकव्विरुन नहार अलल लैल, और वो लपेटता है दिन को रात पर। सुबह शाम ये मंजर देखते हैं हम सारे। तकवीर काफ वाव रा से है। कव्वरा कहते हैं उमामे को सर पर लपेटना और बल पर बल देते जाना। पगड़ी बांधते देखा है कभी किसी को? एक खास एंगल से बांधते हैं, हर जो बल होता है ना उसको कव्वर कहते हैं। कौरुन काफ वाव रात पे तनवीन, तो रात पे दिन को कवर करना, जो इंग्लिश का कवर है ना वो असल में यही है कि इस तरह रात पे दिन आ जाती है। अभी दिन होता है तो रात आ जाता है, रात आती है तो दिन आ जाता है। इस तरीके से वो काम हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ لَلَّيْلِ, क्या सिखा रहा है अल्लाह हमें कि तुम्हारी ज़िंदगी की सुबह पे तुम्हारी मौत की रात आ रही है, बस उसका एक चक्कर पड़ने वाला है। ये जो बीमारी आई है ना, ये एक कौर था, उसके ऊपर एक और बीमारी, एक और बीमारी, बुढ़ापा, ज़िंदगी, उम्र, ये सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी को खा के रख देगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ لَلَّيْلِ, और दिन पर रात, रात पर दिन। हर बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो अंधेरे से जवानी की तरफ आ रहा है, रोशनी की तरफ आ रहा है, और हर जवान जो बूढ़ा हो रहा है। आप एक किस तरह का ग्राफ बनाइए, जैसे वो टेबल्स होते हैं ना, चार्ट बनते हैं और उसमें यूं यूं जाते हैं। आप यहाँ खड़े हैं ना, आप यूं एक स्लोप करके ना सेमी सर्कल बनाए। ये जो ऊपर की पीक है ना, इसके ऊपर लिखें 30, ये नीचे लिखें न्यू बोर्न बेबी, ये 30, और इधर लिख लें डेथ। हम जब नीचे से 30 साल तक जा रहे होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी क्या है? युकव्विरुल नहारा अलल्लई, हम अंधेरों से रोशनियों पर निकले। हर दिन ताकत बढ़ रही है, खूबसूरती बढ़ती है, जवानी आती है, एनर्जी मिलती है। हम में से जो अब 30 से नीचे जा रहा है ना, तो वो किधर जा रहा है? युकव्विरुल लैल अलल नहार, अब हमारी रोशनियाँ इससे समांत बढ़ रही हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारे अंदर झुर्रियाँ आ रही हैं, हमारे अंदर ताकतें नहीं है। बाहर हम ठीक भी लगे ना, तो अंदर की मशीनरी ख़राब है। जैसे गाड़ी न्यू ब्रांड की होती है ना, फ्राटे भरती है, 5 साल तक गाड़ी बिल्कुल ठीक चलती है, उसको वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं होती। 5-6 साल पुरानी गाड़ी है ना, तो वो फिर युकव्विरुल्लैल अलन्नहार, ये फितरत का असूल है। वसख्खर अश्शम्स वलक़मर, और उसने हरकत में रखा हुआ सूरज और चाँद को, मुसख्खर किए हुए गर्दिश में, भाग रहे हैं भाग रहे हैं, ये कायनात चल रही है। कुल्लू यजरी लिया चले मुसम्मा, हर एक चल रहा है एक ख़ास मुकर्रर तक, वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। तुम्हारे रुकने से रुकेगा नहीं, किसी की बद्दुआ से नहीं रुकेगा, किसी के कहने से तेज़ नहीं होगा, ये सब कुछ चलते 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 अपना काम कर रहा है। तुम क्यों खड़े हो? तुम नेकियों के मौके क्यों नहीं कबूल करते? तुम क्यों गुनाहों से नहीं रुकते? तुम्हें अल्लाह ताला ने एक मकसद दिया था, तुम उसको क्यों नहीं समझते? नहीं समझते तो ना समझो, अल्लाह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ार, गौर से सुन लो, वही इज्जत वाला और बहुत बख्शने वाला है। उसके हाथ में उसकी कुदरत ये है कि वो तुम्हारी सरकशियों के बायस तुम्हें एक मिनट में ख़त्म करके रख दे और तुम्हें नहस तहस नहस कर दे। लेकिन करता क्यों नहीं? क्योंकि अज़ीज़ के साथ अलगफ़ार भी है, बख्शिश और पर्दा पोशी उसका शेव है। इसलिए तुम अब उसकी गफ़ारियत की वजह से दुनिया में जी रहे हो, पनप रहे हो, वरना उसके अलअज़ीज़ होने की दलील तो ये थी कि वह तुम्हें पकड़ के रख दे। बाकी रह के तुम हो किस खेत की मूली उस ज़ात के मामले में जिसकी नाफरमानी करते हो, जिसके काम को हल्का जानते हो, जिसके रास्ते में तुम नहीं चलना चाहते। तो कहा, खलकुकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उसने तो पैदा किया तुम्हें एक फ़र्द से, आदम अलैहिस्सलाम से। थुम्मा जाला मिन्हा ज़ौजहा, फिर बना दिया उसी से उसका जोड़ा यानी हव्वा। फिर वानज़ला लकुम मिनल अनामी समानियत अज़्वाज, और पैदा किए तुम्हारे लिए जानवरों में से आठ जोड़े। कहाँ पढ़े हमने समानियत अज़्वाज? सूरत अलनाम में आठ जोड़े, दो बकरियों के, दो गाय के, दो ऊँटों के, भेड़ों के, समानियत अज़्वाज। यख्लुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, एक और अपनी औकात सुन लो कि वो पैदा करता है तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में से। खल्कम मिन बादि खल्किन, एक हालत से दूसरी हालत, बच्चे की माँ के पेट की हरकतें, हर 40 डेज में बच्चे की हालत बदल जाती है। नुतफा से अलक, अलका से मुदगा, मुदगा से इज़ाम, इज़ाम से फिर बच्चा बाहर आ जाता है। का ये कहाँ हो रहा है? फ़ी ज़ुलुमातिन थलास, तीन अंधेरों में। कौन से अंधेरे? पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा और झिल्ली का अंधेरा जिसमें बच्चा लिपटा होता है। कहाँ से आई हो तुम? अल्लाह ने तुम्हें कहाँ से निकाल के कहाँ खड़ा कर दिया? तुम हो क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अल्लाह की ज़रूरत हो? तुम अल्लाह की को मजबूरी हो? कुछ भी नहीं हो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, मान लो लोगो, यही है अल्लाह तुम्हारा रब। तो जब रब वो है तो लहुल मुल्क, हुकूमत भी फिर उसी की है। शान उसकी, कुदरत उसकी, अजमत उसकी, सब कुछ उसके हाथ में। ये कायनात चल रही है, चलाई जा रही है उसके हुक्म से, तुम क्या कर लेते हो? जब वो अल्लाह है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, तो फिर उसकी मलकियत को भी मानो, मानो कि वो मालिक हकीकी है। ला इलाहा इल्लाहुवा, उसके सिवा और कोई नहीं है। तूफान ना तो सरफुन, फिर तुम किधर मुंह फेर कर चल दे रहे हो? फिर तुम का मुंह उठा के भाग रहे हो? ऐसे लगता है कि किसी का मुंह उठा के इस तरफ किया जा रहा है, रास्ता दूसरी तरफ है, तुम किसी दूसरी तरफ जा रहे हो। अल्लाह ताला दलाइल पे दलाइल देकर बता रहा है कि अल्लाह की तरफ पलटाओ। आप देखिए कि पीछे बात हुई थी अल्लाह के बेटों की, कि अल्लाह ताला की बेटियाँ, अल्लाह ताला यहाँ दलाइल दे के बता रहे हैं कि मुझे बेटों की ज़रूरत नहीं। पहली दलील, अल्लाह हर नुक्स और ऐब और कमज़ोरी से पाक है, और औलाद की ज़रूरत तो नक्स के लिए है, क्योंकि हम कमज़ोर होने वाले हैं, औलाद आके हमें मजबूती देगी, हम छोड़ने वाले हैं और हमें पीछे से वारिस की ज़रूरत है। दूसरी दलील है कि वो अकेला अपनी ज़ात में वाहिद है, किसी जिन्स का फ़र्द नहीं है, और औलाद तो हम जिन्स के साथ ताल्लुक़ के ज़रिए में पैदा होती है ना। अल्लाह तो अकेला है, गालिब है, कहार है। फिर तीसरी चीज़, अलकहार, ज़बरदस्त गलबे वाला, हर चीज़ उसके गलबे में जकड़ी हुई है। कोई चीज़ मिलती है तुम्हें अपने और रब के बीच में कॉमन, कोई कॉमन ग्राउंड हो तो उस पर बात कर लो, तो मान जाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक है जिसने तुम्हारे लिए कायनात में कहीं जानवर पैदा कर दिए, कहीं क्या कुछ तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम गौर नहीं करते। ये अल्लाह जिसके ये काम है, जो गालिब है, उसकी गुस्ताखियाँ करते हो, और पकड़ता नहीं है, मोहलत देता है तो समझते हो बड़ा ढीला। वो एक शेर भी है ना कि ना जा उसके तहम्मुल पे, कि बड़ी दिलगीर है पकड़ उसकी। अल्लाह पकड़ता ज़रा देर से, जब पकड़ता है तो चीखें निकल जाती हैं बंदे की। किस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला कह रहे हैं, और यहाँ आदम और हव्वा का तस्करा ऐसे ही है जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तुमने आज जो कुछ किया ना मुझे वो भी मालूम है, और जो तुम कल कर चुके हो मुझे उसकी भी खूब खबर है। ये मत सोचो कि तुम्हारे बाप दादा को नहीं जानता और तुम्हारे अबाजदाद को नहीं जानता, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। मालिक हाकिम परवरदिगार वो है, तूफान ना दूसरा फोन। तुम किधर जा रहे हो? ज़रा देखे तो सही, दुनिया कहाँ जा रही है? आज हमारी सोचें किसके लिए, हमारे गम क्या, हमारी फिक्रें क्या, हमारी कुर्बानियाँ किसके लिए, हमारी तवज्जें किसकी तरफ? का जब इतनी बड़ी ज़ात और तुम मुँह फेर रहे हो तो जाओ फिर शौक से फिरो। इन तक फरू फ़ैन्नल्लाह गनी अनकुम, अगर तुम ना शुक्री करते हो तो बेशक अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत ही कोई नहीं। शौक से रहो, काबिल गौर लफ्ज़ है। देखिए पीछे ये नहीं कहा कि तुम किधर फिरे जा रहे हो, कहा क्या तुम किधर से फिराए जा रहे हो, कि यानी कोई दूसरा है जो तुम्हें उल्टी पटियाँ पढ़ा रहा है, कोई है जिसके बहकावे में आके सीधी सी अकल सी बात नहीं समझ आती, और वो पटियाँ पढ़ाने वाला अलगरूर तुम्हारे ऊपर सवार वो शैतान है, जो दुनिया तुम्हारे लिए नागुजीर करके दिखाता है और आखरत को ऑप्शन पे रखता है। दुनिया के टिकट कन्फर्म करवाते हो, आखरत का टिकट चांस का ले लेते हो। कोई सस्ती सेल लगने का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई सस्ता टिकट मिले तो फिर आखरत के सफ़र के लिए सवारी करें। देखिए दुनिया में लोगों ने जहाँ जाना होता है ना, महंगे टिकट लेके जाते हैं। खुदा न खास्ता कोई दुख सुख अचानक आ जाए तो बंदे को जाना पड़े, तीन तीन गुना भी महंगी टिकट दे के लोग जाते हैं। वो दुनिया का टिकट है ना। दीन के मामले में जब कोई इमरजेंसी आती है ना, तो हम जमा तफरीक में पड़ जाते हैं, ज़बर ज़ेर पेश कर रहे होते हैं, अच्छा अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं कि ये कौन है जो तुम्हें पीछे से फेर रहा है, तो जाओ फिर तुम उसकी बातें मानते हो तो शौक से मानो, उसको तुम्हारी परवाह नहीं। वाइन तक फरू फ़ैन अल्लाह गनी युन अनकुम, इस लफ्ज़ गनी युन अनकुम सरा सामने रखिए। अल्लाह ताला का नाम है अल गनी, और अल गनी को इंग्लिश में आप कह लें द मोस्ट वेल्थीस्ट, जिसको कह रहे मिलियनेरियन, सबसे अमीर शख्स। ऐसी ईमेल्स लोग भेजते रहते हैं, एक दूसरे की रालें टपकाते रहते हैं, दुनिया का सबसे अमीर शख्स, सबसे करोड़पति, इसके पास इतने घर हैं, इतनी गाड़ियाँ। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं अल गनी हूँ, लेकिन गनी युन अनकुम, जैसे दुनिया के बहुत अमीर शख्स को अमूमन दुनिया में फिर भी दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए कोई कोई अपने वर्कर्स के बगैर फैक्ट्री चला सकता है? कोई सफाई करने के बगैर कोई स्टोर रन कर सकता है? मिलियनेरियन को भी दुनिया में ज़रूरत पड़ती है, चाहे अपनी झाड़ू पोछे वाली औरत ही की घर में ज़रूरत पड़े। अल्लाह कहता है मैं इतना बड़ा अलगनी हूँ कि गनी युन अनकुम, मेरा अलगना या मेरा अलगनी होना तुम्हारा मरहूने मिन्नत नहीं कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो फैक्ट्री को हर रोज़ करोड़ों का नुकसान होने लगा। गनी यूनान को जो आराम से बैठो, मुझे परवाह नहीं, मेरे साथ किसी का मुफाद नहीं है। और जो ये सोचता है कि मेरे लिए कुर्बानी देगा ताकि मुझे फ़ायदा दे, तो वो ना दे, उसको परवाह नहीं है। दुनिया में अपने फ़ायदे नुकसान को तोलने वाला इंसान जब अल्लाह के साथ ताल्लुक में नफ़े नुकसान को तोलता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे लिए इस बारे में कोई कमी नहीं आती। मान लो तो मान लो, नहीं मानते तो ना मानो, तुम मानोगे तो भी मैं हूँ, तुम नहीं मानोगे तो भी मैं हूँ। वला यरदा लिइबादिही अल-कुफ्र, इतनी बड़ी ज़ात ने नहीं पसंद किया अपने बंदों के लिए ना शुक्री को। औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम उसकी ना शुक्रिया किया करो। हाँ वइन तशकुरु यरदाहु लकुम, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वो पसंद करता है इसे तुम्हारे लिए। बड़ा प्यारा खूबसूरत जुमला। ये नहीं कहा कि तुम शुक्र करोगे तो वो खुश होता है, कहा तुम्हारे शुक्र से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, तुम्हारे लिए मैं ये पसंद करता हूँ कि तुम शुक्र करते हो। इसलिए तुम्हें कुफर से मना नहीं कर रहा कि उसकी किबरियाई में फ़र्क पड़ जाएगा, बल्कि वो बार बार तुम्हें इसलिए कुफर से रोकता है कि तुम इसकी कुदरत के शाहकार हो, इसको तुमसे प्यार है। कुफर करके अपने आप को ज़ाया क्यों करते हो? लक़द खलकना लिंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, उसने तुम्हें अच्छी इज्जत दी लेकिन सुम्मा रदत ना हो असफला साफ़िलीन, तुम्हारी सारी अजमत खाक में मिल जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि शिर्क और कुफर और नाशुक्री करके ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हो, इसलिए चाहता है कि लोगों शुक्रगुजार बन जाओ, फिर उसके जूदो करम की बारिश तुम पर बरसेगी। हर घड़ी बुलंद से बुलंद तर मंजिल की तरफ तुम मसरूफ़ परवास रहोगे। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुम इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हो कि शायद अल्लाह का कोई फ़ायदा। इस मज़मून को एक हदीस में अल्लाह के नबी ने पेश किया, और हदीस भी कुदसी है, यानी अल्लाह के नबी की ज़ुबान से अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है, یا عبادی، اے میرے بندو، ذرا اس پکار کو اپنے دل پہ تو محسوس کریں، او میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے، انسان اور جن، اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، یعنی سارے ہی فاجر ہو جاؤ، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے لے سارے لوگ فاجر ہو جائیں، تب بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، تم اگلے پچھلے جن ان سارے سب سے متقی شخص جیسے بھی ہو جاؤ، تو اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی زیادتی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذات کون سی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، اس لیے سوچ لو کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اپنے گناہوں کے پٹارے خود اٹھانے پڑیں گے۔ دنیا میں تو لوگ اٹھا لیتے ہیں ایک دوسرے کا بوجھ، لیکن وہاں نہیں اٹھائیں گے، وہ اپنے بوجھ خود اٹھائیں گے، اپنی نافرمانیوں کے، شرک کے، معصیت کے بوجھ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ کی ذات بندے کو موقع دے رہی ہے کہ ابھی توبہ کر لو، اپنے شرک سے پاک ہو جاؤ، ورنہ کل بہت بھاری بوجھ ہوگا۔ سورۃ فاتحہ میں تو ہم پڑھ چکے کہ بوجھ سے لدا ہوا شخص دوسرے کو پکارے گا کہ آؤ مجھے ذرا ہاتھ دے دو، تو فرمایا وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، کوئی اس کی بوجھ کو کم نہیں کریں گے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹنا تو تمہارے رب کی طرف ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبریں دے گا جو تم عمل کر کے آئے ہو، پتہ تو اس دن لگے گا۔ اور یہ سارا کچھ کس بنیاد پہ ہوگا؟ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ سینے کے راز بھی جانتا ہے، اس کو خوب پتہ ہے کون کتنے پانی میں۔ دوسروں کے سامنے تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنے نیک ہیں، پتہ نہیں ان کا حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں چھپے ہوئے، میں قیامت کے دن جو معاملے کروں گا نا، وہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے، فیورٹزم کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے حق کی بنیاد پہ، بذات صدور، سینے کی باتوں کو جانتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے کھا اور پی رہا ہے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہوتی ہے، اس میں چند باتیں اب جو آتی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے ولا یرضا لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ نہیں چاہے کفر کرو تو ہم کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے شراب پیو تو ہم پی رہے ہیں، اللہ نے کہا زنا کر لو تو کر لیا، نہ کرواتا نہ روکتا۔ تو دو لفظ یاد رکھیے کہ تقدیر دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضا۔ مشکل لفظ ہیں لیکن مشیت شاہ سے ہے، انشاءاللہ ماشاء اللہ، اور ایک لفظ ہے رضا، اردو میں بولتے ہیں راضی رہنا، خوش رہنا۔ مشیت کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو دنیا میں، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے سے خوش بھی ہو، یہ ہے بس اللہ's will، جو بھی اللہ نے جا ماشاء اللہ۔ دنیا میں ہر کام جو ہو رہا ہے نا، وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے قتل غارت زنا سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دوسری قسم ہے کاموں کی رضا، وہ کام جو ہو تو اللہ کی مشیت سے رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ خوش بھی ہے۔ چلیے ایک مثال سے بات واضح کرنا چاہتی ہوں۔ ایک حکمران ہے، ایک نیا ملک بنا، مثال ایک جزیرہ ڈسکور ہوا، لوگ کہتے ہیں اس کو آباد کرتے ہیں، حکمران ایسٹیمیشن لگاتا ہے کیا کریں، یہاں سڑکیں بنیں گی، یہاں ہاسپٹل بنیں گے، یہاں اسکول بنیں گے، یہاں گروسری اسٹورس بنیں گے، یہاں مسجدیں بنیں گی، اور یہاں پہ جیل بنے گی۔ بھائی یہ کیا ضرورت ہے بھائی، ابھی تو نیا نیا ملک بن رہا ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ جیل کیوں بنا رہے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ساری جگہ بنانے میں اس بادشاہ یا اس حکمران کی مشیت کے ساتھ رضا شامل تھی، وہ خوشی خوشی بنائے گا کہ یہ بینیفٹس کی چیزیں ہیں، ہیومن ویلفیئر کی چیزیں ہیں، لیکن جیل کی عمارت یا اس پہ جو پیسہ لگے کرنا، وہ مشیت سے تو بن رہا لیکن رضا سے نہیں بن رہا۔ ہر وہ بیلا جو آپ ڈاکٹرز کے نام پہ دیتے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی خوشی سے ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے؟ ٹکٹ آپ کے گاڑی کو لگ جاتی ہے پے کرتے ہیں نا، ایک خرچ ہے جو خوشی خوشی کرتے ہیں آپ، وہ ہے آپ کی رضا، آئی ایم ہیپی اٹس مائی پلیئر۔ آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں گھر لیتے ہیں، لیکن کچھ چٹیاں پڑ جاتی ہیں، टैक्स किसी को भी नहीं अच्छा लगता देना, टिकट लग जाए अच्छा नहीं लगता, चंदा देना पड़े अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह ताला ने ये शिर्क के लिए जो लफ्ज़ बोला, वला यरदा, मैं खुश नहीं हूँ कि तुम शिर्क करो। कोई अपनी चीज़ों को बना के जलाना चाहता है? अल्लाह अपने बंदों को आग में डाल के जलाना चाहता है? आप ज़रा सोचें। तो जो शिर्क करता है ना, वो कॉकरोच की तरह हो जाता है। जिस तरह किसी भी सफाई पसंद शख्स को कॉकरोच को मारते हुए कोई दुख नहीं होता ना, इस तरह अल्लाह को ऐसे काफिरों को आग में फेंकते हुए ज़र्रा बराबर दुख नहीं होगा, क्योंकि गनीयुन अनकुम, वो तुमसे गनी है। कई दफ़ा हम कहते हैं हाय इतने गोरे चेहरे, इतने अच्छे, हम किसी की बात ही नहीं करते कि कौन आग में जाएगा नहीं। लेकिन याद रखे, अगर चेहरे के हुसन और सारी खूबसूरतियों के साथ अगर जान के एक बंदा कुफर पे जमा हुआ ना, सारी हुज्जतें पूरी हो गई, अल्लाह की बात पहुंची, नहीं मानता ना, तो अल्लाह की नज़रों में वो एक मक्खी और मच्छर से बढ़ के नहीं, उसको पकड़ के ताफुन से पाक कर देगा, पोल्यूशन फ्री सोसाइटी बना देगा जिसका नाम जन्नत है। तो लिहाजा अल्लाह ताला अपना काम मशियत और रज़ा से करता है। एक दूसरी मिसाल से भी आपको मशियत और रज़ा का फ़र्क समझाना चाहूँगी। मसलन आप देखिए कि एक शख्स अगर हराम खोरी के ज़रिए रिस्क कमाता है तो अल्लाह उसको भी रिस्क दे देता है ना, ये है उसकी मशियत। मगर मशियत कहता है चोर या डाकू या रिश्वत खोर को रिस्क देने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला चोर या डाकू जो है उसके रिश्वत लेने को पसंद भी करता है, ठीक है ना। हलाल से जो लोग कमा रहे हैं ना, वो अल्लाह की रज़ा से कमा रहे हैं, और जो हराम तरीक़ों से कमा रहे हैं ना, वो अल्लाह की मशियत से कमा रहे हैं। क्या मजबूरी है, तुमने करना तो है, करो फिर, लेकिन मुझे खुशी नहीं है। जैसे बच्चा माँ की एक ना सुने ना, तो फिर माँ कहती है जाओ दफा हो जाओ, जाओ कर लो ये काम, चलो ये कर लो, लेकिन मेरे पास ना आना इसके बाद, पटक के मारती है। माँ तो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है, अल्लाह ताला तो मजबूर भी नहीं। फिर दूसरी चीज़ इन आयतों में हमने देखी, कुफर के मुकाबले में यहाँ ईमान की बजाय शुक्र का लफ्ज़ आया है। देख लीजिए आप, एक जगह कुफर है तो दूसरी जगह शुक्र है। वो क्यों? कि शुक्रगुजार ही असल में ईमान वाले होते हैं। इन तकफुरु के बाद वा इन तशकुरु, होना क्या चाहिए था, वा इन तुमिनु। तो शुक्रगुजार दिल से ईमान का चश्मा फूटता है। कुफर दर हकीकत एहसान फरामोशी और नमक हरामी की हद है, और ईमान हकीकत में शुक्रगुजारी का लाजमी तकाजा है। बर्तन में जो चीज़ होती है ना, वही बाहर आती है। शुक्रगुजारी होगी तो ईमान की सूरत में बाहर आएगी। आप अल्लाह को नाराज़ कर सकते हैं जिसने मुझे इतना कुछ दिया? क्या मैं अपने रब को नाराज़ करूं? क्या मैं उसकी दी हुई नेकी के मौके को ज़ाया कर दूं? तो शुक्र और ईमान लाजिम और मलजूम है। जहाँ शुक्र होगा वहाँ ईमान होगा, और जहाँ कुफर होगा वहाँ शुक्र का सिरे से कोई सवाल नहीं होगा, न शुक्रियाँ होंगी। ऐसे ही लोगों की फिर कुछ कहानियाँ अगली आयतों में हमें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि लोग ना शुक्रे कैसे बन जाते हैं।